आज के पुनीत अवसर पर प्रथम कल्पना बहन यहां भजन से इनका प्रारंभ होगा, आप यहां आ सकते हैं।
हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को मैं द्याहूं, अपने गुरु को मैं द्याहूं, गुरु की कृपा से सब सुख पाऊं, गुरु की कृपा से सब सुख पाऊं। अपने गुरु को मैं द्याहूं, नादौर ब्रह्म का ज्ञान मैं पाऊं, नादौर ब्रह्म का ज्ञान मैं पाऊं। अपने गुरु को मैं जाऊं, अपने गुरु, अपने गुरु, अपने गुरु को मैं जाऊं।
पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में, अखंडानंद जी महाराज के पावन चरणों में, और आज जिनको हम बड़े भाव से याद कर रहे हैं, और हमेशा जहां जहां प्रेमपुरी बसा है वहां वहां उनकी चिरंजीव याद भी है, ऐसे त्यागमूर्ति गणेशानंदपुरी जी महाराज का भी हम वंदन पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जब भी आप जहां भी हो, क्योंकि यह तो कोई ऐसी कहां हो गए ऐसे सब ये मोक्ष के में कहां ब्रह्मलीन होते हैं तो कहां रहते हैं संत लोग, यह अपनी सोच के बाहर की बात है। मगर जहां भी हो वहां से जहां जहां प्रेमपुरी की संस्थाएं होंगी, जहां जहां अच्छे अच्छे संत के प्रवचन चलते होंगे, जो भी अच्छी बातें चलती होगी वहां ऐसे त्यागमूर्ति जी का आशीर्वाद हमेशा बरसता होगा। एक सुंदर ग्रंथ जैसी किताब मेरे हाथ में दो दिन पहले ही प्रणव बोध यह सुंदर ग्रंथ मेरे हाथ में आया, मैंने पढ़ा उनको। त्यागमूर्ति जी जो प्रेमपुरी जी महाराज के कितने नजदीक थे उसका पूरा इसमें लिखा है, उसमें बहुत ही अच्छी रीत से दूसरी भी बातें कहीं बताई है। और यह ग्रंथ एक उसको दर्शन करने लायक है, उनको व्यवस्थित रीत से रख के उसका अध्ययन करने लायक है। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आज जो भी यहां 9:30 बजे जब ये समाप्ति होगी तो जो जो यहां पधारेंगे संतों के हाथ से इनको दिया जाएगा तो इनका महत्व और हमारे लिए बढ़ेगा। और जो संस्था जेबी नगर साधना सदन है इसका ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, प्रेमपुरी सत्संग मंडल जो है 1962 में उनका शुभारंभ प्रेमपुरी सत्संग मंडल करके हुआ, तो प्रेमपुरी आश्रम अपना बना उसके पूर्व ही यह आश्रम का निर्माण हो चुका था। तो ऐसे त्यागमूर्ति जी जिनका जो संत के रूप में आए उसमें भी प्रेमपुरी जी महाराज की बड़ी कृपा और उनका आशीर्वाद रहा उनके जीवन पर। तो ऐसे संत जो प्रेमपुरी में एक हमारे जो माला की तरह जुड़े हुए हैं, उनको याद करने का सौभाग्य और इनसे इनके साथ संतों को संतों के दर्शन का भी हमें जो लाभ मिला है उसके लिए हम ईश्वर से वंदन करते हैं कि ऐसी हमेशा कोई न कोई घड़ी हमें देते रहे कि हम हमेशा संतों के दर्शन करते रहें और सुंदर वाणी हम ग्रहण करें। आज यहां संतों के बीच में हमारे जो साधना सदन के और यहां के भी प्रेमपुरी के बड़े भाविक सत्संगी राज पुरोहित जी विराजमान हैं, जो त्यागमूर्ति जी के बहुत करीब थे और उनमें उन्होंने एक रूप से सालों तक जो साधना सदन है और एवं जो भी त्यागमूर्ति जी की प्रवृत्तियां हैं उसका बढ़ाने का उनका योगदान बहुत है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप आए और हमें सबको ग्रहित करें कि किस तरह से त्यागमूर्ति जी का जीवन था और बाद में प्रथम हम माल्यार्पण कर ले जैसा आप चाहो। आइए झुंझुनू जी और भी आप भी आइए। शिवन भाई
अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव त्यागमूर्ति जी महाराज परम गुरु प्रेमपुरी जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। आज की सभा के अध्यक्ष महेश्वरानंद जी महाराज, संचालक विश्वात्मानंद जी महाराज, प्रणानंद जी महाराज, धर्मानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज को वंदन। प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी झुंझुनूवाला जी, गिरीश भाई और सत्संगी भाई और बहनों, ओम नमो नारायण। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और हमारे अहोभाग्य है कि आज हम त्यागमूर्ति जी महाराज का 91st प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। स्वामी जी का प्रेमपुरी आश्रम से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा। स्वामी जी प्रेमपुरी जी महाराज जो कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर थे से उन्होंने दीक्षा ली और उनसे विद्या भी ली और एक ऐसा संबंध रहा जहां गुरु और शिष्य दोनों ही एक उच्च कोटि के संत रहे। स्वामी जी समय समय पर इस प्रेमपुरी आश्रम में आते रहे और स्वाध्याय प्रवचन कराते रहे। स्वामी जी का प्रेमपुरी जी से तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा, इसलिए भी रहा कि महाराज जी को मुंबई में प्रेमपुरी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उन्हें चादर भी ओढ़ाई। त्यागमूर्ति जी महाराज का व्यक्तित्व एक संपूर्ण व्यक्तित्व था। उनका वेदांत पर, शास्त्रों पर बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भी थी और उसकी पकड़ भी थी। इतने ऊंचे वेदांती होने के बावजूद वो रोज मंदिर में जाते, मंदिरों में भगवान को फूल चढ़ाते, यज्ञ यागादि करवाते, गौ सेवा करवाते, संत सेवा करवाते। इस तरह से उन्होंने पूरा ही जीवन हमारे लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। उनको देख के हम हमारे जीवन को संवार सकते हैं। उनकी गतिविधियों को देखकर हमें हमारे में क्या कमियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी ने प्रेमपुरी आश्रम में आने के साथ साथ हरिद्वार में साधना सदन की स्थापना की और अपने गुरु के नाम से सत्प्रेम साधना ट्रस्ट की स्थापना की और गुरु भक्ति को और मजबूत रूप के लिए उन्होंने मुंबई में प्रेमपुरी सत्संग मंडल की स्थापना की। ये दोनों संस्थाएं उन्होंने गुरु को अर्पित की, ये उनकी गुरु भक्ति है। स्वामी जी शंकराचार्य जी के प्रति बहुत ही श्रद्धावान थे। वो बात बात पे उनको याद करते और उनके भाष्य की सेवा और कहीं की बात नहीं करते। वो कहते शास्त्र में जो शंकराचार्य जी ने कहा है वो संपूर्ण है, व्याख्या है तो उसी के ऊपर है, लेकिन मूल चीज तो आचार्य जी ने बताई दी है। स्वामी जी ने अपना जीवन एक त्याग मूर्ति के रूप में प्रारंभ किया। वो एक लंगोट में घूमते रहे, कैलाश की यात्राएं की, और फिर बाद में उन्होंने संतों के लिए और भक्तों के लिए साधना सदन की स्थापना की, और वो भी बड़े अच्छे ढंग से, बड़े ही सक्सेसफुल ढंग से उन्होंने आश्रम बनाया। बहुत विशाल आश्रम है जहां हर वर्ष ज्ञान यज्ञ होता है 35 दिन का, जिसमें प्रस्थान तरी मूल रूप से पढ़ाई जाती है, और 12 महीने वहां सत्संग चलता है सवेरे और शाम को। शायद ये कैलाश आश्रम ऋषिकेश और साधना सदन हरिद्वार, ये दो ही जगह चलता है, और ये बड़ी विशेषता की बात है। स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो संतों में इतने आदरणीय थे, जिसको मैं जब उनके साथ उत्तर काशी गया तब मैं देखा, बड़े बड़े महात्मा आते, अपनी शंकाओं का समाधान करवाते और वो प्रसन्न होकर जाते। स्वामी जी भक्तों में और संतों में दोनों में ही बड़े लोकप्रिय थे। स्वामी जी की शैली एक विशेष शैली थी। जब वो ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मसूत्र पढ़ाते और ब्रह्मसूत्र के पढ़ाते समय जब वो अध्यास बातें पढ़ाते, मानो कोई मोर्चा ले रहे हैं और बात ऐसी समझाते कि सबके हृदय ग्राही हो जाती थी। स्वामी जी की शैली समाज शैली भी थी और व्यास शैली भी थी। विद्वानों के लिए व्यास शैली और हम जैसे सामान्य लोगों के लिए समाज शैली। एक बार मैंने पूछा, महाराज जी आपने तो जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया, बचपन से निकल पड़े, इतनी तपस्याएं की, तो लगता है कि आप संसार पार कर चुके हैं, लेकिन हम जैसों का क्या होगा जिन्होंने जीवन भर ग्रस्त में बिताया और अब कभी कभी सत्संग कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा। स्वामी जी कहे, नहीं, फिक्र नहीं करना, ये ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, जितना कि जो जानते हो उसको धारण करना जरूरी है। मुख्य बात तो बहुत छोटी है, एक अद्वैत तत्व है, चेतन असंग, जो इस संसार में परिपूर्ण है। माया उसकी शक्ति है, करना धरना माया में है, परमात्मा कुछ नहीं करते, जीव भी कुछ नहीं करता, जीव सिर्फ करने का अभिमान करता है, और जब अभिमान करता है तो कर्ता बन जाता है, कर्ता बनता है तो भोक्ता बनना पड़ता है, कर्ता भोक्ता बनते ही वो संसारी बनकर के और संसार चक्र में उलझ जाता है और दुखी हो जाता है। जब दुखी होता है और किसी संत महापुरुष को शांत अवस्था में देखता है तो उसके पास पहुंचता है। संत महात्मा ने समझा, देखो भाई, ये दुख का कारण तो हमने जो हमारी चेतन और जड़ को मिथुनीकरण कर दिया है, ये है, इसको अलग करना है। तो जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, स्वामी जी बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही सीधे ढंग से उन्होंने ही इसी प्रेमपुरी आश्रम में पंचदशी के प्रवचन किए थे। उन्हें पंचदशी भी बहुत प्रिय थी। उस पंचदशी का नलिनी बहन लहजा वाला ने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, तृप्ति दीप के रूप में, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर समय मिले तो पढ़िएगा आप उसको। आत्मानं चेत विजानियात अहम अस्मिति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामायाम शरीरम अनुसज्जुरेत। अगर ये इंसान समझ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं, तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो ये मैं का रूप क्या, जिसे हम जीव कहते, वो है क्या, समझ में नहीं आता। तो मैं जो है वो अधिष्ठान, चेतन, अंतकरण, और अंतकरण में अधिष्ठान का प्रतिबिंब, ये तीनों चीजें मिलकर के जीव है। और जब हम प्रतिबिंब और बिंब कहते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा बिंब, दर्पण और प्रतिबिंब तीनों को अलग अलग समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये तीनों एक ही जगह है, जहां प्रतिबिंब वही बिंब है, वही अंतकरण है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक तपा हुआ लोहे का गोला, जहां आग है वही लोहा भी है, वो अलग अलग नहीं है, दो भिन्न चीजें नहीं है, वो मिश्रण हो चुका है। ऐसे ही ये तीनों चीजें एक हो चुकी है। स्वामी जी कहते अगर जीव मिथ्या है तो मुक्ति किसकी होगी, जीव मिथ्या नहीं है। ये तीनों चीजों को मिला के देखते हैं तो जीव सत्य हो जाता है। तो इसको कैसे अलग करना, पंचदशी ही कार्य कहते हैं। अधिष्ठान संयुक्तम ब्रह्मांश अवलंबते यदा तदा हम संसारी इत्येव जीव अभिमन्यते। जब हम अधिष्ठान के साथ में ब्रह्मांश पंचकोश इसको पकड़ के चलते हैं तो ये जीव बन जाता है और संसारी हो जाता है। ब्रह्मांश तिरस्कारात अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्मा हम असंगो अस्मिति बुद्धिते। और जब वही जीव अपना ध्यान पूरा का पूरा चेतन पे केंद्रित करता है और जब उसको भूल जाता है तो वह असंग चेतन बन जाता है। तो उसको कैसे करें, तो गीता में स्वामी जी आते थे, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषत मनसे वेन्द्रिय ग्राम विनियम्य स्वतंत्र समन्तता शनेर शनेर उपरमेतद, धीरे धीरे शनेर शनेर उपरमेतद बुद्धिया धृति गृहतया आत्मसंबंध कृत्वा न किंचित भी चिंतित। और आत्मा में स्थित होकर के फिर और चिंतन न करें, आत्मा का चिंतन करते रहें और किसी का चिंतन न करें और अपने आप को। स्वामी जी कहते थे ये जो जब कभी मुक्ति होगी तो ऐसा लगेगा कि मैं तो मुक्ति था, ऐसा नहीं लगेगा मैं नया मुक्त हुआ हूं, मैं मुक्ति था और ये सारा संसार भी मुक्ति है, ऐसा जब वो लगेगा तब वो मुक्ति की पहचान है। स्वामी जी कई छोटी छोटी बातें कहते थे। स्वामी जी कहते थे कि कोई व्यक्ति कोई विद्वान ये समझ सकता है धीरे धीरे कि मैं सत चित और आनंद हूं, लेकिन ये नहीं समझता कि हम ब्रह्मास्मि। इसके लिए गुरु की जरूरत है, इसके लिए महावाक्यों की जरूरत है। ऐसे कई छोटी छोटी बातें इशारा करते समझाते पढ़ाते और बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन सुलभन सोई, संतों के साथ चलते चलते ये विषय ऐसे ही समझ में आता है जैसे मां के साथ चलते चलते मातृभाषा। ऐसे गुरुदेव को पाकर के हम सब कृतार्थ हो गए, उनको कोटि कोटि वंदन। असीम चित सिंधु में जब मन पवन हो जाए लय, व्यापार लय हो जीव का जगनाव भी हो वे विलय। इस भांति से करके मनन नरप्राज्ञ चुप हो जाया है, भोला न अब तक चुप हुआ आश्चर्य है आश्चर्य है। ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत
हरिओम। बहुत ही सुंदर इससे महाराज जी का और प्रेमपुरी आश्रम और प्रेमपुरी जी महाराज का जो एक बहुत ही घनिष्ठ नाता था उनको राज जी ने बताया। प्रेमपुरी आश्रम में जैसे हम जानते हैं त्यागमूर्ति जी अध्यक्ष के रूप में भी बहुत साल तक यहां मार्गदर्शन देते रहे, उनके पूर्व उसके पूर्व भी महाराज जी का यहां हमें साथ मिलता रहा। अभी जो संचालन करने वाले हैं विश्वनाथ जी महाराज जो वहां साधना सदन के अध्यक्ष भी हैं और हमारे ट्रस्टी भी है, और जब भी यहां हमें कोई भी प्रेमपुरी आश्रम में कोई मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो हमेशा वह हमारे बीच में रहते हैं। ऐसे जो संत है वह अभी जो बाकी का जो कार्यक्रम है उनका संचालन करेंगे। जो महेश्वरान जी महाराज है जो अध्यक्ष के रूप में यहां विराजमान है, कई दफे हमें दर्शन का उनका लाभ मिला है और आज हम बड़े आनंदित हैं कि ऐसे विरल संत हमारे बीच में है और अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। बाकी सब संतों के वंदन करते हुए मैं पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि पूरा ये बाकी का संचालन करें। हरिओम।
सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव एवं सद्गुरु देव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित महाराज श्री जी का यह 91वां प्राकट्य उत्सव आज से प्रतिवर्ष यहां पर भी मनाना प्रारंभ हो रहा है। शांति पाठ के अनंतर आपने महाराज श्री जी की ही श्रद्धालु शिष्या श्रीमती कल्पनाबेन पारिक के भजन का श्रवण करने का लाभ उठाया। माल्यार्पण विधि के अनंतर स्वागत में हमारे परम प्रेमास्पद गिरीश भाई के सुंदर शब्दों में संतों का तथा आप सबका अभिनंदन हुआ। प्रासंगिक में महाराज श्री जी के अत्यंत निकट कृपापात्र सत्प्रेम साधना ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे परम प्रेमास्पद श्री बागसिंह जी राजपुरोहित जी द्वारा प्रासंगिक में महाराज श्री जी का संक्षिप्त परिचय तथा महाराज श्री जी के सानिध्य में उन्हें उनके साधना में उपयोगी जो महाराज श्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसे उन्होंने धारण किया उसे आप सबके सामने रखा जिसका हम लोगों ने श्रवण किया। अब इस सभा के सभापति महाराज श्री जी के ही अनन्य हृदय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीन त्रिवेणीपुरी जी महाराज जिनके भारत में तो अनेक शहरों में अनेक आश्रम हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी प्रकाश संन्यास आश्रम है, उनके उत्तराधिकारी कृपापात्र जो उनके पदचिन्हों पर चलते हुए शांकरी परंपरा का केवल भारतवर्ष में ही नहीं देश विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं अभी भी ऐसे परम आदर्श वरिष्ठ महामंडलेश्वर जी जिनका यहां मुंबई में घाटकोपर में वेदांत कुटीर आश्रम भी है, वहां प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन जैसा यहां और स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल अंधेरी में होता है ऐसा प्रतिदिन होता है, अनेक विद्वान संत आकर के वहां पर भी प्रचार प्रसार करते हैं। वे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अनुमति से संतों के प्रवचनों का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम वर्तमान में स्वामी श्री प्रेमपुरी जी सत्संग मंडल जेबी नगर अंधेरी में जो स्वाध्याय प्रवचन करा रहे हैं वे ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी अपने प्रवचन को 7 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी महाराज।
हरिओम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मंच पर विराजमान अध्यक्ष रूपेण परम पूज्य परमादर्श श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा साधना सदन आश्रम सत्प्रेम साधना ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष पूज्य श्री महाराज जी तथा हमारे ही समीप में विराजमान आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज तथा स्वामी धर्मानंद जी महाराज यहां के समस्त श्रोतागण भक्तिमती माताएं आज पूज्य ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति जी महाराज उनके दो उत्सव वैसे तो प्रायः संतों में निर्वाण महोत्सव की बड़ी ही परंपरा है जन्म महोत्सव जिसके जन्म से यदि किसी को प्रेरणा मिलती हो तो अवश्य ही मनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म ये सब क्या है? ये सब दिव्य है। उन्होंने जो भी किया वो सब दिव्य है, अतः इसलिए उनके जन्म को और कर्म को जो ठीक से समझ लेता है, भगवान इस बात को कहते हैं कि करने के लिए नहीं उन्होंने कहा कि जैसा हमने किया है वैसा ही आप भी कीजिए, नहीं, एवं यो माम वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः जान लेता है। तत्त्वतः जानने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि मैं कुछ करता नहीं हूं, करने वाला कौन है? मेरी प्रकृति है, वही सब कुछ करती है। इसलिए यदि कोई मेरे जन्म को, परमात्मा का जन्म नहीं होता है लेकिन फिर भी जन्म जैसा दिख रहा है और हम सब लोग मानते भी हैं, उनका भी जन्मोत्सव मनाते हैं, तो तत्त्वतः जब महापुरुषों का इसी प्रकार से उनका ना जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है लेकिन मध्य में इस अनादि काल के संसार में कितने लोग आए कितने लोग गए, हां जिनका संबंध हम लोगों के साथ में है और उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं और विशेष करके जो हमारे जीवन में कुछ आदर्श जिनको हम ग्रहण कर सकें जिनके द्वारा हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होती हो अवश्य ही उनके लिए उनका स्मरण, उनके लिए तो नहीं होता है, हम अपने ही जीवन में थोड़ा सा उनका स्मरण करके अपने जीवन को पवित्र अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। पूज्य महाराज श्री का जो जीवन था हमने उनको ज्ञान यज्ञ में पहले जब मैं ऋषिकेश कैलाश आश्रम में कभी बीच में तो वो ब्रह्मसूत्र प्रायः उनका बड़ा कमांड था उसमें, बाकी तो उपनिषद वगैरह वो करवाते ही थे, सब कुछ उनको आत्मसात था ही लेकिन ब्रह्मसूत्र के ऊपर उनका बहुत ही अधिकार, जिसको कहते हैं अधिकार पूर्वक बोलना,
और उनके जो श्लोक बोलने की शैली थी वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी और ग्राह्य होती थी। उसमें जो श्लोक बोला करते थे, क्योंकि उससे पहले वैयासिक न्यायमाला में जो वहां चलता है उसमें श्लोक आते हैं पूर्व पक्ष आदि का, संशय आदि के बारे में, तो उसमें क्या पूर्व पक्ष है, क्या उत्तर पक्ष है आदि आदि करके। पूज्य महाराज श्री उसको इतने, उसका विषय इतना जटिल और फिर भी उसको इतना वो बढ़िया बना देते थे कि सामान्य श्रोता भी, तभी भक्त लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वहां आया करते थे। बाहर से प्रति वर्ष महाराष्ट्री ने इस परंपरा को किया कि बहुत ही लंबी परंपरा ऋषिकेश कैलाश आश्रम में जो चलती है, प्रस्थान त्रयी का जो स्वाध्याय चलता है, तो उसमें एक वर्ष प्रतिवर्ष वहां भी होता है अष्टादशा। महाराज श्री ने एक ही उसमें तीनों को एक नई पद्धति महाराज श्री ने किया कि तीनों का उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र तीनों का एक साथ अध्ययन हो जाए थोड़े समय में। बहुत से लोग हैं घर गृहस्थी में, संसार में बहुत उलझे हुए हैं, इतना समय उनके पास नहीं है कि इतना समय दे सके वे विस्तार। अभी आप सुन रहे थे श्री राज पुरोहित जी के द्वारा कि महाराज श्री के द्वारा यह जो सब कार्यक्रम चलाया गया विशेष करके, और उनके जीवन में हमने ये सुना, खैर उस समय तो हम सब लोग देखते ही थे कि महाराज श्री ने संकल्प लिया कि हरिद्वार से हम बाहर नहीं जाएंगे। लोग भागते हैं चारों ओर, इधर जाओ उधर जाओ। पहले महाराज श्री ने सब प्रवृत्ति जो भी करनी थी किया, उसके बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि बस हरिद्वार से बाहर, सीमा से बाहर नहीं जाना है। बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी प्रवृत्ति करके और बिल्कुल क्षेत्र संन्यास लेके बैठ गए हो, अब जिसको आना है इधर आइए। वास्तव में उन्होंने अपने जो वह जो उनका नाम था त्याग मूर्ति, उन्होंने जो उनके जीवन को पहले पूर्व जीवन को देखा ही होगा, जिन लोगों ने अभी आप सुन रहे थे कि एक कौपीन के ऊपर और वो कहां तक गए, बड़ी बड़ी दूर तक चले गए, तो उनका जो जीवन है हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, यदि आप अपने मन को समाहित करना चाहते हैं तो जिनका जो वीतराग हो चुके हैं उनके बारे में आप चिंतन करेंगे तो आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। तो पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में मैं अपनी इस वाक पुष्पांजलि को और उनके दिव्य स्मरण को करते हुए और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,
हरिओम। निश्चित समय में बड़े ही सुंदर शब्दों में हमारे प्रेमास्पद ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी महाराज ने महाराज श्री जी के जीवन के विषय में प्रकाश डाला। इस सभा के विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में दो महापुरुष यहां पर विराजमान हैं, परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री धर्मानंद जी महाराज, जो यहां पर स्वाध्याय करा रहे हैं, और प्रेमपुरी आश्रम में स्वाध्याय प्रारंभ भी महाराज श्री जी जिनके प्राकट्य उत्सव में हम लोग एकत्रित हुए हैं उन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है स्वाध्याय, जो प्रतिदिन चल रहा है और अनेक साधक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रवचन तो अच्छा ही है लेकिन शास्त्र रूपी समुद्र में जो ऊपर ऊपर तैरते हैं उनको केवल जो समुद्र की लहरें हैं उनकी चपेटे मात्र सहन करनी पड़ती हैं, और जो समुद्र के अंदर गहराई में उतरते हैं तो समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, तो उन्हें रत्न भी मिलता है, रत्नों की आकर आकर कहते हैं खान को, रत्नों की खान है, 14 रत्न भी तो समुद्र मंथन से ही निकले हैं ना, उसमें अमृत भी एक है। और वास्तविक अमृत ये बाहरी समुद्र का मंथन करने से नहीं निकलता, शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करने से वास्तविक अमृत जिसे ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, स्वस्वरूप कहा जाता है, उसका लाभ होता है। और स्वाद प्रवचन है समुद्र में, शास्त्र रूपी समुद्र में ऊपर ऊपर से तैरना, उससे भी आपको ज्ञान जरूर होगा, लेकिन जो गहराई है, शास्त्र का परम तात्पर्य है, वह सहसा समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो शास्त्र रूपी समुद्र के गहराई में उतरना होता है। शास्त्र रूपी गहराई में उतरने के लिए पनडुब्बी की जरूरत होती है, और पनडुब्बी है एक प्रकार से ये स्वाध्याय। स्वाध्याय रूपी पनडुब्बी में बैठ करके आप आराम से उन शास्त्र रूपी समुद्र के गहराई में विद्यमान रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, और वो रत्न है आत्मरूपी रत्न, उसे पाया जा सकता है। उसको पाने के लिए ही ईश्वर की कृपा से हमें यह देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अतः यहां महाराज श्री जी की एक प्रकार से अहेतु की कृपा है कि स्वाध्याय यहां का प्रारंभ महाराज श्री जी की प्रेरणा से हुआ। और साधक, अब कल गिरीश भाई बता रहे थे कि साधकों की संख्या अब 40-45 तक पहुंची है, सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो स्वाध्याय करा रहे हैं इस समय यहां पर हमारे परम प्रेमास्पद धर्मानंद जी महाराज, आचार्य धर्मानंद जी, वे 12 मिनट तक आपको प्रस्तुत विषय में ही सुनाएंगे।
ओ ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये सामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागो यः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदय शमनिषो वाति तृणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वनाम धन्य मुंबापुरी में इस दिव्य कल्पतरु के संस्थापक प्रेमपुरी जी महाराज एवं उस कल्पतरु के फल को जन जन तक प्रसाद को प्रसादित करने वाले स्वनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय अखंडानंद जी महाराज एवं जिनके उपलक्ष्य में हम सभी लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे स्वनाम धन्य त्यागमूर्ति प्रातस्मरणीय गणेशान जी महाराज एवं मंचस्थ जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, आज की सभाध्यक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारिण महामंडलेश्वर मेश्वरान जी महाराज एवं हमारे पार्श्व में विराजमान मंच के संचालक अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पदवाक्य प्रमाण पारावाणिण महामल्लेश्वर विश्वात्मा जी महाराज एवं महामल्लेश्वर स्वामी प्रणवान जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, भक्तिमती माताओं भाइयों बहनों, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तभी हम सभी लोगों को ऐसा दिव्य पावन अवसर उपलब्ध होता है। शास्त्र में कहा है आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूति काम। यदि हमें ऐश्वर्य चाहिए तो आत्मज्ञानी की अर्चना करना चाहिए। भूति शब्द के दो अर्थ होते हैं, मानुषवित्त दैववित्त। चाहे हमें संसार की संपदा चाहिए या हमें परमात्मा को पाने के लिए जिसको दैववित्त कहते हैं वह चाहिए, वो दोनों को प्राप्त करना है तो हमें जरूर महापुरुषों का अर्चन वंदन करना चाहिए। एक तदर्थ आज इस दिव्य प्रेमपुरी आश्रम में सुनाम धन्य त्याग मूर्ति जी महाराज का हम लोग प्राकट्य उत्सव मनाना प्रारंभ कर रहे हैं और हमेशा चलता रहे तो हम लोग को इससे बहुत ही कुछ उपलब्ध होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति। ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। सामान्य प्राणी का शरीर छूटने के बाद जिस प्रकार से उसके अंतःकरण में वृत्ति होती है उसी लोक को उपलब्ध होता है, परंतु जो ब्रह्मविद पुरुष हैं उनके चित्त में संसाराकार वृत्ति नहीं होती है। ब्रह्म विद ब्रह्म ही भवति, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप होने के बाद हम जैसे उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का चाहे जन्म दिवस मनाए या निर्वाण महोत्सव मनाए, इस बहाने से जब हम उसका स्मरण करते हैं, जैसे आप आज की आधुनिक भाषा में जब किसी को कॉल मोबाइल करते हैं केवल 10 नंबर डायल करते हैं तत्क्षण आप उस व्यक्ति से संपर्क साधित कर लेते हैं, ऐसे ही हम लोग जब उस महापुरुष का स्मरण करते हैं, क्योंकि जो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है उसको हम लोग सुनते हैं जानते हैं परंतु तदाकार वृत्ति बन नहीं पाती है। परंतु जिन महापुरुषों को हमने साक्षात्कार देखा है, आप नित्य प्रति बंधन में बोला करते हैं ईश्वरो गुरु रात मेति मूर्ति भेद विभागिने, उस परमात्मा का तीन जो स्वरूप है ईश्वर गुरु और आत्मा, जो सदगुरु का साक्षात स्वरूप है वह तो हमारे आंखों के सामने जिसको हमने प्रत्यक्ष किया है तदाकार हम वृत्ति बनाकर स्मरण कर सकते हैं। तो यदि हम मनाते समय जो साक्षात परमात्मा का ये तीन स्वरूप है ईश्वर गुरु और आत्मा, तो इस प्राकट्य महोत्सव या निर्वाण महोत्सव के बहाने हम लोग अपने चित्त के वृत्ति को तदाकार जब बनाएंगे तो उनका स्मरण होगा, तो वह जो अमूर्त रूप में मौजूद है आज भी अमूर्त रूप में मौजूद है। जिस प्रकार से हम लोग अग्नि में एक चम्मच घी की आहुति देते हैं, उस घी के एक चम्मच को केवल एक व्यक्ति ही खा सकता, वह अभी उसका पेट नहीं भरने वाला, परंतु एक चम्मच आहुति अग्नि में डालता है और कहता अग्ने स्वाहा। उस आहुति से जो दिव्य एक ऑक्सीजन तैयार होता है वह सभी को उपलब्ध हो जाता है, वह अमूर्त रूप से उपलब्ध होता है। आपने आहुति दिया वह मूर्त रूप था, साकार था, आहूत होने के बाद वही अमूर्त रूप में सबको जीवनी शक्ति प्रदान करता है और मरणोपरांत वही घृत की आहुति हमें अदृष्ट रूप से उस स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने की साधनी भूत आहुति बन जाती है। इसी प्रकार से महापुरुष जीते जी हमें तो दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं और शरीर छोड़ने के बाद विदेह कवल्य प्राप्त करने के बाद अमूर्त रूप से जिससे हम उनका स्मरण करते हैं, स्मरण करते हमें वह अपने कृपा के मूसलाधार वर्षा करते हैं। इसलिए हमें उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए। हमें उनकी दो बातें कभी नहीं भूलती हैं। आप लोगों को सबको पता ही है कि जगत के जो विख्यात सुनाम धन्य कांदीवली के महाराज श्री काशिकांजी महाराज बीवी विदेह कवल्य को प्राप्त हो गए, तो उन दिनों लगभग 1993 की बात होगी, उस समय मैं पूज्य चरण ओंकारेश्वर के महाराज श्री स्वनाम धन्य ब्रह्मलीन रामानंद सरस्वती के चरणों में स्वाध्याय करता था प्रस्थानतरी। उसी समय प्रस्थानतरी के बाद कांदीवली महाराज श्री की भागवत श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ कथा चल रही थी। उस कथा में मैं भी श्रवण कर रहा था। ठीक रात्रि की बात है, 11:30-12 बज रहे होंगे, एकाएक लाइट चली गई, मई महीना। मैं कमरे से निकला, चारों तरफ देखा, कहीं जगह नहीं। इतने संत इतने भक्त थे कि मुझे आसन लगाने का जगह कहीं नहीं मिला। मेरे बाएं हाथ में सिरहाना और एक चटाई, एक दो कपड़े थे, और पूज्य महाराज श्री के जो लोग गए होंगे साधना, उन्हें मालूम होगा जो कांच का जो कमरा है उसके सामने खड़ा था 5 मिनट तक। मैं सोचा कि कहां आसन लगाऊं, इतने महाराज श्री नीचे से ऊपर आ गए, उन्होंने मेरे भावनाओं को समझ लिया। इतने बिल्कुल मधु से सनेही वाणी से कहे वह बात आज भी हमारे हृदय कानों में हमेशा गूंजती रहती है। बोले बेटा यही आसन लगा लो, मैं अंदर जा रहा हूं, अब प्रातः काल के फले नहीं निकलूंगा। इतने प्रेम प्यार से बोले, वह शब्द मुझे बोलता नहीं है, दूसरा कोई होता शक करता कि 11:30-12 बजे यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। परंतु महाराज जी इतने अंतर्यामी, मैं वहां आसन लगा लिया महाराज जी को साष्टांग नमस्कार करके, और रात भर मेरे अंतःकरण में उनकी स्मृति बनी रही। प्रातः काल उठा, उठते देखा महाराज जी दरवाजे से बाहर निकल रहे, मैंने पुनः दर्शन किया। जो महापुरुष होते उनमें आत्मीय भावना होती है, आज भी वो मौजूद है, हम स्मरण करें तो वे हमेशा अमूर्त रूप से दर्शन देते हैं, क्योंकि श्रुति कह दिए नतस प्राणा उत्क्रामन्ते ब्रह्मवसन ब्रह्म आप्येति। सामान्य प्राणी कामना के साथ जन्मता है और कामना के कांटे में उलझकर शरीर छोड़ देता है, परंतु तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कि हम निर्वाण उत्सव मनाते हैं। निर्वाण मतलब निर्गत वाण कामादय यस्मात, जिनके चित्त से ये कामना वासना के जो वाण है ना कांटे भी निकल जाते हैं, उनका निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। तो हमारे भी दिल दिमाग में अनादिकाल से कामनाओं का कांटा चुभा हुआ है, और जब तक हम इन महापुरुषों के उपदेश से कामनाओं के कांटों को नहीं निकालते हैं, तब तक हमें परम आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए हमें अवश्य इन महापुरुषों के इस प्रकाश उत्सव मना करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। और दूसरी बात मुझे याद आती है, प्रथम जब मिला मैं ऋषिकेश कलाश्रम से दर्शन करने आया, वे बोले ब्रह्मचारी देखो जो विद्यार्थी होता वही विद्वान होता है। उन्होंने मेरे साहस को बढ़ाया, मैंने निवेदन किया महाराज जी अब महात्मा बन गए, सोचता हूं कि हिमालय पर जाकर समाधि लगाएं, आकाश में उड़ जाएं। सच्ची कह रहा हूं, जो नया महात्मा बनता है ना वही सोचता है, उसके दिमाग में वेदांत नहीं होता। क्या सोचता है, हिमालय में जाएंगे समाधि लगाएंगे और पक्षी की तरह से आकाश में उड़ जाएंगे और सागर में पैदल चलेंगे। ऐसी मेरे अंदर भावनाएं थी, मैंने निवेदन किया महाराज जी मैं चाहता हूं हिमालय जाकर तपस्या करूं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करूं। उन्होंने कहा देखो सिद्धि प्राप्त करके तपस्या करके तुम क्या पक्षी होना चाहते, पक्षी जो उड़ता है वही तो हम काम करेंगे, इसीलिए तुम्हें वेदांत का गहराई से चिंतन करना चाहिए। उन्हीं महाराज श्री की प्रेरणा से आशीर्वाद से आज हम सभी लोग मुम्बापुरी में आप सभी लोगों को वेदांत श्रवण कराते रहते हैं। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,
हरिओम। बहुत ही सुंदर महाराज श्री जी की जो
शास्त्र निष्ठा का वर्णन हमारे प्रेमास्पद आचार्य धर्मानंद जी ने किया। महाराज श्री जी को शास्त्र चिंतन करने वाले साधक संतों को देख करके बड़ा आनंद होता था। जैसे यमराज जी को नचिकेता को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और कठोपनिषद में नचिकेता को देख करके जो यमराज जी को प्रसन्नता हुई, वो यमराज जी अपने मुख से ही कहते हैं तुम्हारे जैसे हमको बार बार मिले, क्योंकि यमराज जी के पास सहसा आत्मजिज्ञासु नहीं जाते हैं, कामना ले जो पापी लोग हैं वही सहसा यमपुरी में पहुंचते हैं। सदेह पहुंचे हैं नचिकेता आत्मजिज्ञासु बन करके, उनके लिए तो धर्मराज है। भगवान भाष्यकार ने भी कठोपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में उनको नमस्कार किया ब्रह्म विद्या का आचार्य मानकर। ऐसे महाराज श्री जी को वेदांत चिंतन करने वाले, शास्त्र चिंतन करने वाले साधक संत बड़े प्रिय थे। अब इसी कड़ी में इस सभा के विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में विराजमान मंच पर जो प्रतिदिन जिनको आप 7:30 से 8:30 तक श्रवण कर रहे हैं, हमारे परम प्रेमास्पद परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज, वे आपको प्रस्तुत विषय पर अपने सुंदर शब्दों में श्रवण कराएंगे। स्वामी महामंडलेश्वर जी महाराज।
मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष परम सिद्धय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज, मंच के संचालक परम सिद्धय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, मेरे ही पार्श्व में विराजमान बड़े ही सरल मूर्ति विद्वान स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, प्रस्थानत्रयी के विद्वान तपस्वी स्वामी श्री धर्मानंद जी महाराज, समस्त ट्रस्टीगण, अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आए हुए सभी भक्तजन, बड़े ही आनंद का विषय है। हम लोग एक महापुरुष तत्वनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी जिनका न जन्म था और न मृत्यु, फिर भी हम उनके 91 जन्मदिन को मनाने के लिए यहां पर प्रस्तुत हैं। आत्मभिन्न जो भी वस्तु हैं, जन्म जीवन और मृत्यु ये उसके धर्म है। आत्मा को छोड़कर दुनिया में जो भी चीजें हैं उसका जन्म है, जीवन है और उसकी मृत्यु है। और यही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नव्य न्याय में एक बड़ी मजेदार बात कही, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश में शब्द पैदा होता है, रहता है, लेकिन आकाश में सर्वत्र शब्द नहीं रहता है। उसको बड़े ही मजेदार शब्दों में कहा, घटावच्छेदेन आकाश में शब्द रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हारमोनियम बजाता है तो हारमोनियम को अवच्छेदक माना है और उस तद अवच्छेदेन आकाश में शब्द पैदा होता है, रहता है और मिट जाता है। आकाश तत्व तो व्यापक है, ऐसे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व व्यापक हैं, उसमें न जन्म है और न मृत्यु, लेकिन उसी आत्म तत्व में ही जन्म और मृत्यु है। उसी आत्म तत्व में ही जन्म और मृत्यु की प्रतीति होती है, तो उस प्रतीति का जो आधार है ये शरीर, शरीर अवच्छेदेन जन्म और शरीर अवच्छेदेन मृत्यु। और हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है, आत्मा निराकार निर्गुण है, अजन्मा है, और वो चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन उसी आत्म तत्व में शरीर के रूप में जब जन्म दिखाई देता है तो वो जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य परम श्रद्धेय त्यागमूर्ति जी महाराज का जन्म जो हम मना रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरणास्पद। ये शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान को पाने का उत्तम साधन। आप कठोपनिषद में श्रवण कर रहे थे, धातु प्रसादान महिमानमात्मना, उस तत्व को निराकार तत्व को जानना हो तो शरीर साधन है। शरीर के बिना जानना संभव नहीं है, जानने का साधन ये मन बुद्धि मनसा एव इदम अप्तव्यम। उन्होंने इसी शरीर से आत्मज्ञान को प्राप्त किया, तत्व निष्ठा प्राप्त की, और उसी शरीर से उन्होंने वो निष्ठा हमको प्रदान कर दी। उनके जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप संतों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। जब मैंने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और उसके बाद फिर साधु जीवन में आया, 1984 में मैं हरिद्वार में था, एक अद्भुत दृश्य देखा करता था, और वो अद्भुत दृश्य था महामंडलेश्वरों का अलौकिक आभा मंडल। यहां पुराने लोगों ने देखा होगा, हरिद्वार का कुंभ, इलाहाबाद का कुंभ, उस समय बहुत बड़े बड़े महापुरुष बड़े ही अद्भुत मंच पर विराजते थे, पूज्य स्वामी श्री कैलाश आश्रम के पीठाधीश्वर, सूरतगिरी के महामंडलेश्वर जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर महेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री काशिकानंद जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जो आपके गुरुदेव, ऐसे लोगों को हमने देखा मंच पर विराजते थे, हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनकी वचनामृत श्रवण करने के लिए खड़े हो जाया करते थे। बड़े ही अद्भुत महात्मा, और उन्हीं में से हमारे त्यागमूर्ति जी महाराज, उनका बहुत अद्भुत व्यक्तित्व था, और साधुओं के प्रति उनके मन में परंपरा के प्रति, स्वाध्याय प्रवचन के प्रति अगाध निष्ठा। जब मैं सबसे पहले ऐसी थी, बहुत बार दूर से हम दर्शन किया करते थे और सोचते थे कि हम इनके मार्ग पर चलेंगे, ये जैसे महापुरुष अनुभव करते हैं वैसे अनुभव करेंगे, स्वाध्याय प्रवचन करेंगे, समाज में मार्ग दिखाएंगे, सारी चीजें कल्पनाएं क्या करते थे उन महापुरुषों को देखकर। ऐसा अद्भुत जीवन हमारे मित्र बड़े ही तपस्वी विरक्त महात्मा थे, स्वामी एकांतारण्य सरस्वती जी महाराज, उनके साथ में साधना सदन आया। बनारस जा रहे थे हम लोग पढ़ने के लिए, महाराज जी के चरणों में मैं गया। रात्रि का समय, शयन कर रहे थे वो। इतने अंतरंग और इतने धीर गंभीर साधु थे कि उनके पास जाने के बाद हमारे विचारों पर नियंत्रण आ जाया करता था। ऐसा लगता था कि विचार थम रहे हैं। उनके मैं चरण दबाने लगा तो एक चीज मेरे को आज भी वो स्पर्श करती हैं बात, और जब मैं याद करता हूं तो आज भी वो स्पर्श मुझे याद है। जब मैंने उनके चरण छुए और दबाने लगा तो उनके चरण पत्थर की तरह कठोर, अखंड ब्रह्मचर्य। और मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा महाराज जी आपके चरण तो इतने कठोर हैं। और उसके बाद जो उनकी कृपा हुई, एक दो चीजें मैं आपको सुना दूं, महापुरुष को उसी रूप में हम लोग याद करें जिस रूप में उन्होंने समाज को प्रभावित किया, अनेकों साधकों को उन्होंने प्रभावित किया। महाराज जी को मैंने कहा महाराज जी आप अपने जीवन की कुछ अनुभूतियां सुनाई जिससे कि हमें प्रेरणा मिले। अरे वो तो सचमुच त्याग मूर्ति थे, वो केवल शब्द नहीं था, वो अर्थ थे। त्याग मूर्ति का जो अर्थ था ना, वो प्रतिमान थे, वो प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं मानस कैलाश सरोवर की यात्रा के लिए गया। पुराने जमाने की बात, उस समय सीमाओं पर इतना प्रतिबंध नहीं था, तिब्बत की यात्राएं बड़ी सरल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि एक लंगोटी लगाकर, शरीर पर कुछ भी नहीं है और खाने की कोई सामग्री नहीं, त्याग मूर्ति, पैसा तो है नहीं, और वो चल पड़े यात्रा के लिए। महाराज ने बड़ी अद्भुत बात सुनाई। उन्होंने कहा दो दो तीन तीन दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता, और जब खाने को मिल जाए तो जितना मिले सब खा जाए, फिर जो भी मिले 10-20-50 रोटी जो मिले खाए, मानो कि स्टॉक हो गया। अब वो दो तीन दिन तक खाने को मिलने अब कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी बताई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो साधुओं की बहुत अंतरंग चीजें होती हैं, कुछ ऐसी व्यवहार की चीजें भी थी उसमें। जब वो तिब्बत गए तो तिब्बत में उनको एक तिब्बती बौद्ध मठ मिला। आज वहां गए तो जैसे वहां के बौद्ध साधुओं ने इनको देखा और वो जोर से चिल्ला पड़े, कांछा कांछा ऐसा कुछ हो महाराज जी बोले, कांछा कांछा ऐसा शब्द महाराज जी ने बोला। महाराज जी कुछ तिब्बती शब्द भी बोलते थे, आओ 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 ऐसा बड़ा स्वागत किया, नजदीक बुलाए, और सब लोग बोलने लगे कि ये काशी लामा काशी लामा। उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बार बार सबको इशारा करके दिखा रहे थे कि ये काशी लामा काशी लामा काशी लामा। तो महाराज जी को मैंने पूछा कि महाराज जी लामा काशी लामा क्या बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तिब्बती लोग सन्यासियों को काशी का सन्यासी बोलते, लामा माने सन्यासी होता है, और वो सब लोग प्रसन्न हो रहे थे कि काशी का लामा माने काशी का सन्यासी आया, काशी का सन्यासी। उन्होंने फिर बौद्ध मठ में कक्ष दिया, वस्त्र दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने उनको भोजन कराया, और वो आग्रह करने लगे कि आप यहां रुको हमारे यहां। ऐसा अद्भुत उन्होंने स्वागत किया। फिर महाराज श्री ने उनके साथ वहां मानस की यात्राएं की। अद्भुत उनका जीवन था, उनकी मेधा शक्ति ऐसी कि जब बात करते समय मैंने पूछा कि महाराज जी आपने 90 न्याय पढ़ा कि नहीं, अभी महापुरुषों को पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी उस समय बचपना था क्योंकि हम भी पढ़ने के लिए जा रहे थे बनारस, तो महाराज जी ने कहा कि मैंने शंकर चैतन्य भारती जी के पास पढ़ाई की, बहुत विद्वान थे वो। तो शायद शंकर चैतन्य भारती जी अपने आश्रम में आए होंगे या ऐसा लगता है, तो उन्होंने उनको पूछा महाराज श्री को कि आपने कुछ अध्ययन किया है क्या, तो क्या किया है? तो उन्होंने दो तीन ग्रंथ ऐसे नाम बताए, अवच्छेदकत्व निरुक्ति, सिद्धांत लक्षण, ऐसे वेदा नव्य न्याय के ग्रंथ। और महाराज जी ने एक बात बोली, महाराज जी ने कहा कि दो तीन साल पहले मैंने पढ़ाई की थी उसकी, और वो ताजा ताजा था। आप ध्यान देंगे शब्द के ऊपर। उन्होंने कहा कि महाराज श्री ने कहा, त्यागमूर्ति जी महाराज जी ने शंकर चैतन्य भारती जी महाराज जी को, कि दो तीन साल पहले पढ़ाई की हुई जो चीजें थी वो बोल रही थी कि ताजा ताजा था। बोले तीन साल से ज्यादा होता तो शायद भूल जाता, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, हमारा तो तीन दिन में भूल जाता है। और वो तीन साल की पहले की पढ़ाई भी बोल रही थी कि वो ताजा ताजा था। ऐसी अगाध मेधा शक्ति और अनुपम चरित्र जीवन, ऐसे महापुरुष का जन्म, उनका जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद है। तो हमें बहुत खुशी है कि ऐसे महापुरुष हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, और उसी की प्रतिमूर्ति हमारे द्वितीय त्यागमूर्ति जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज। क्योंकि बहुत बड़े बड़े मठ आश्रम हमारे पास हैं, लेकिन उस आश्रम को चलाने के लिए वैसे ही महापुरुषों का मिलना बहुत कठिन है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी वैसे ही त्यागी ब्रह्मज्ञानी आचार्य हम लोगों के बीच में मध्य हैं, और उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। पूज्य त्यागमूर्ति जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक मैं अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्।
हरिओम हरिओम। महाराज श्री जी का साधक अवस्था कालीन त्याग तथा जो मेधा अर्थात ग्रंथ धारण शक्ति जो बुद्धि में होती है, उस पर प्रकाश डालते हुए हमारे परम प्रेमास्पद महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने सुंदर शब्दों में महाराज श्री जी का जीवन दर्शन कराया। मेधा शक्ति के विषय में तो कैलाश आश्रम में जब विद्याध्ययन महाराज श्री जी किया करते थे, तो उस समय अपने प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज के दीर्घकाल तक मुंबई निवास में ही प्रचार प्रसार के लिए रहने के कारण षष्ठ पीठाधीश्वर वहां पर थे, जिनको बड़े महाराज श्रद्धा से कहा जाता था, परम पूज्य विष्णुदेवानंद गिरिजी महाराज। उनसे अध्ययन करते समय महाराज श्री जी के समकालीन जो विद्यार्थी संतगण वहां पर निवास करते थे, उन सबको महाराज बड़े महाराज जी ने कहा कि आप लोग एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने श्लोक याद करा करके हमको सुना सकते हो, बताओ। तो सब विद्यार्थियों ने एक दिन का समय लिया और कई ने 10 सुनाए, किसी ने 15 सुनाए, 25 सुनाए, 50 तक कई लोग निकले। महाराज जी ने एक दिन में 100 श्लोकों को याद करा करके, आज भी हमारे आश्रम में स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज जो उनकी अपेक्षा जूनियर विद्यार्थी थे, नए नए बिल्कुल, महाराज जी सीनियर थे, वो बताते हैं जो पहले से याद किए हुए नहीं, जो एक भी याद नहीं था ऐसा सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले पहले 100 श्लोक याद करके सुना दिए थे एक दिन में, ऐसी उनकी मेधा शक्ति थी। और त्याग के विषय में तो आपने सुना ही कि हिमालय में कितने भी गर्म कपड़े पहन करके भी हम लोग यात्रा करते हैं। कभी बद्रीनाथ तो गए होंगे, एक बार हम लोग श्री बागसिंह जी राज पुरोहित और इनके एक पड़ोसी थे, गए थे हम 2006 या 7 में, रात में बद्रीनाथ निवास किया। तो इनके पड़ोसी है साउथ के, उनको 2-3 रजाई ओढ़ने के लिए दिए, लेकिन रात में खूब कांपते रहे ठंडी से। और ऐसे इसमें बद्रीनाथ में और पूरे हिमालय में, बद्रीनाथ से भी ऊपर कैलाश मानसरोवर आदि सब है, लंगोटी मात्र पर और कोई वस्त्र साथ में नहीं, हिमालय की यात्रा करके आए, उनके उस यानी आंतरिक त्याग तो सबसे महत्वपूर्ण ही है, लेकिन बाह्य त्याग आंतरिक त्याग का प्रतीक होता है, तितिक्षा का प्रतीक होता है। सहसा ठंडी गर्मी को सहन करना कठिन पड़ता है, और साधन चतुष्टय में समाधि षट संपत्ति में एक तितिक्षा नाम का साधन आता है। ठंडी गर्मी को सहन करना साधक अवस्था में तितिक्षा कहलाती है, मान अपमान आदि को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। तो तितिक्षा का भी खूब अभ्यास, त्याग का बाह्य त्याग और आंतरिक त्याग तो था ही, त्याग मूर्ति कोई महाराज श्री जी ने अपना स्वयं रखा हुआ नाम नहीं था, उनकी इस आंतरिक तथा बाह्य त्याग वृत्ति को देख करके उनके समकालीन जो महापुरुष हुए वे इनको त्यागमूर्ति त्यागमूर्ति इस नाम से कहा करते थे समकालीन संत लोग। और ये कहा जाता है और सबका अनुभव भी है, बचपन में हम जिस विषय में परिश्रम करते हैं वो अंतिम तक भूलते नहीं है, याद रहता है। और एक युवावस्था ढलने के बाद में जो परिश्रम करके याद भी करते तो भूल जाता है, स्मरण में नहीं रहता। महाराज श्री जी का जब 2004 में, पांच में तो शरीर शांत हुआ, चार में थोड़ा रुग्णावस्था आई, अस्वस्थ रहने लगे, अंतिम अंतिम एक आध महीना दो महीना तो ज्यादा ही, लेकिन उस स्थिति में भी जो शुरू में विद्यार्थी अवस्था में उपनिषदें याद की हुई, गीता अन्य शास्त्रों के श्लोक दूसरे लोगों को, कोई आधा श्लोक आया और दूसरा पूरा नहीं हो पा रहा है, उत्तरार्ध पूर्वार्ध बोल दिया, तो वहां बैठे हुए उनकी सेवा में प्राय अंतिम अंतिम समय में 24 घंटा दो दो तीन तीन चार चार संत उनके पास में बैठे ही रहा करते थे। और संत बैठेंगे तो आपस में तो शास्त्र की चर्चा करेंगे ना, और कभी हम जैसे अमेधावी लोगों को कोई आधा श्लोक कभी याद आया और पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो स्वयं बोलते थे, उससे आगे का ये है, शरीर में असह्य पीड़ा होती थी लेकिन मन में जो विद्यार्थी अवस्था में साधक अवस्था में परिश्रम करके याद किया हुआ शास्त्र वो कभी भूलते नहीं थे, ऐसी आत्मनिष्ठा उनकी अंतिम तक सुस्पष्ट रही। मेधा की बात है, और आत्मा भी छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में उद्दालक जी ने कहा, आत्मलाभ किसको होता है तो जो मेधावी है पंडित है, मतलब पंडित कहा जाता है आत्मा का उपदेश श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से जिसने प्राप्त कर लिया है, अपने बुद्धि से ही उपनिषदें पढ़ ली ऐसा नहीं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास में बैठ करके जिन्होंने उपनिषदों का ठीक ठीक श्रवण किया है वो पंडित कहलाता है। और मेधावी कहलाता है कि उसे वो याद भी रहे उपदेश, तो ऐसे महाराज श्री जी का दोनों भी था। और वो आत्मनिष्ठा हम साधकों के लिए बड़ी प्रेरणादायी महाराज श्री जी की थी। आप ने ये पर्चा वो पढ़ा होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आपके सुपरिचित प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी मोहनानंद जी महाराज का नाम छपा है, और उनको जब हमने निवेदन किया ऐसा ऐसा कार्यक्रम होना है तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया था आने के लिए, लेकिन आप जानते हैं वे जिनके उत्तराधिकारी हैं आनंदवन आश्रम कांदीवली के संस्थापक प्रातस्मरणीय परम पूज्य अभी तक ब्रह्मनिष्ठ थे अब ब्रह्मलीन हुए 24 तारीख को दिवाली के दूसरे दिन और आज 28 से चार पांच दिन ही हुए इसलिए षोडशी का कार्यक्रम आदि बनाने में व्यस्त होने के कारण वे नहीं आ पाए। कल फोन भी किया था उन्होंने, इसलिए उनकी अनुपस्थिति है। द्वादश दर्शन कानन के श्री काशिकानंद जी महाराज का और महाराज श्री जी का भी बड़ा आपस में प्रेम था, इसलिए यहां स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल की स्थापना 1960 में हुई है। पहले यहीं मलवार हिल पर पावलोवा बिल्डिंग में वो चलता था ना, तो वहां आनंदवन आश्रम नहीं था तब कथा करने के लिए, और आनंदवन आश्रम था तब भी स्वाध्याय प्रवचन के लिए आया करते थे स्वामी काशिकानंद जी महाराज, और साधना सदन में भी जब भी वे हरिद्वार आएंगे तो महाराज श्री जी के मिलने के लिए और महाराज श्री जी उनको मिलने के लिए जरूर आपस में जब तक रहे प्रेम से मिलते थे। शास्त्र चर्चा उन लोगों की होती थी। अभी कल जब उनका शरीर शांत हुआ 24 को तो 17 को अस्वस्थ हुए, 15, 16, 17 तीनों दिन हमें तीन तीन चार चार घंटा प्रतिदिन उनके साथ बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए कि 15 को उनका वहां आश्रम है, हमारा निमंत्रण उन्होंने किया था, वे 16 को साधना सदन आए थे और महाराज श्री जी को उस समय भी खूब याद करते थे, कहे शास्त्र में तो थे ही थे और ये साधना सदन को देख करके कहे ये भी खूब विस्तार महाराज श्री ने किया यहां पर, और 17 को भी उनके साथ ही थे, 17 को ही अस्वस्थ हुए। तो ऐसे महाराज श्री जी के पावन जो सदाचार संपन्न जीवन है उससे हम साधकों को अनेकों प्रकार की प्रेरणा मिलती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। महाराज श्री जी के सहज मित्रता के संबंध जिन महात्माओं के प्रति थे ऐसे गिने चुने महात्माओं में से ही एक त्रिवेणीपुरी जी महाराज प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय, इन दोनों को संत समाज में एक दूसरे का लंगोटिया यार कहा जाता था। लंगोटिया यार कहते सहसा व्यक्ति शर्ट और पैंट तो एक दूसरे का बदल सकते हैं, पहन भी सकते हैं, ऐसे कटी वस्त्र भी कभी समय पर नहीं है तो ऊपर वाला उत्तरीय तथा कटी वस्त्र या बनियान आदि पहन सकते हैं संत एक दूसरे का, लेकिन लंगोटी सहसा अपनी ही प्रयोग की जाती है। लेकिन इन दोनों का आपस में इतना प्रेम था और एक बार यही महाराज श्री जी का जब 75वां अमृत जन्मदिन मना रहे थे प्राकट्य महोत्सव तो समापन आज के ही दिन यहां पर था और उस दिन त्रिवेणीपुरी जी महाराज भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और यानी ब्रह्मानंद जी महाराज भी थे, त्रिवेणीपुरी जी महाराज भी थे और पहले पहले बार मैं भी आया था 1998 में। सम्माननीय बच्चू भाई भी थे और कई लोग थे, पूरा मंच भरा था और भी संत कहीं थे। तो कहते हैं एक बार ऐसे आपस में उनका बड़ा हंसी खुशी का व्यवहार था, एक दूसरे की मजाक भी करते थे। जब नेपाल में उनके गुरुजी का आश्रम था, शंकराचार्य मठ, वहां के वे महंत थे, तो वहां रह रहे थे दोनों आपस में। और तो उस समय त्रिवेणीपुर जी महाराज को उनके गुरुजी के साथ कार्यक्रम के लिए कहीं जाना था और आश्रम में, फिर महाराज जी को कहा कि कुछ दिन आप रुकिए। वहां मंदिर था, मंदिर में दर्शनार्थी लोग आते थे, कुछ चढ़ाते भी थे। तो महाराज जी ने फिर वो कहीं बाहर इधर उधर पड़ा हुआ दान पात्र में डालना होता था। महाराज जी ने कहा ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पैसा छूता नहीं हूं, स्पर्श नहीं करता हूं। तो त्रिवेणीपुर जी महाराज ने कहा, एक चिमटा दे दिया उनको स्टील का, कहा कि आप हाथ नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। ये उन्होंने अपने यहां इसी मंच पर कहा भी था, इस चिमटे से पकड़ पकड़ करके उसमें डाला करिए। तो ऐसे आपस में एक दूसरे का खूब प्रेम था। उनके उत्तराधिकारी आज की सभा के अध्यक्ष हमारे प्रतिदिन का सह स्नेह है, वेदांत कुटीर घाट को पर संन्यास आश्रम कनखल आदि अनेकों आश्रमों के परम अध्यक्ष वरिष्ठ परमादर्श महामंडलेश्वर जी महाराज श्री मस्वामी महेश्वरान जी महाराज का आशीर्वचन हम लोगों को अध्यक्षीय लेना है। फिर आभार विधि हमारे प्रेमास्पद गिरीश भाई करेंगे और सब साधकों को वेदांत का प्रवेश जिस ग्रंथ को समझने से सहज हो जाता है। शंकराचार्य भगवान ने उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का, गीता का, भाष्य तथा अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सरल और सारा वेदांत का सार जिसमें है ऐसा एक पंचीकरण नाम का ग्रंथ है शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित, उसकी हिंदी व्याख्या अपने प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के द्वारा की गई है और वो प्रकाशित है साधना सदन से। आज सब साधकों को प्रसाद स्वरूप दी जाएगी, वो ग्रंथ लेकर के ही सब साधक जाएंगे, जिनको पहले जाना है वे भी और जो बाद तक रहेंगे वे भी यहां से उपलब्ध करते हुए ही जाएंगे। अब अध्यक्ष जी महाराज से निवेदन है अपना अध्यक्षीय आशीर्वचन हम सब लोगों को प्रदान करें।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाजरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। परम प्रेमास्पद प्रेम की मूर्ति श्रद्धेय चरण प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता हुआ और परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर श्री त्यागमूर्ति जी महाराज को सश्रद्धा प्रणाम करता हुआ और अपने अंतरंग श्री स्वामी विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज को क्या करूं भाई, चलो तो आप सभी को हार्दिक शुभ आशीर्वाद है। मैं समझता हूं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इन तीनों पीढ़ियों का प्रेम प्राप्त हुआ। 1956 में विले पार्ले संन्यास आश्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरनपुरी जी महाराज ने नर्मदा किनारे एक आश्रम की स्थापना किया, बद्रिका आश्रम, और उसके उद्घाटन में मैं भी गया हुआ था और श्रद्धेय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज भी पधारे हुए थे। वहां जितना स्नेह उन्होंने हमको दिया, मैं तो उसमें छोटा बच्चा था, बहुत ही छोटा बच्चा था, तो इतना स्नेह दिया कि जैसे कोई पुत्र तो नहीं कह सकते लेकिन पौत्र को देता है, ऐसा स्नेह उन्होंने दिया। यात्रा के लिए निकले जो नर्मदा किनारे किनारे तीर्थ उनके लिए, तो मुझे तो किसी ने कहा नहीं क्योंकि मैं सबसे छोटा था, किसी ने नहीं कहा, तो मैं बैठा था। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा इधर आओ। मैंने कहा क्या तुम नहीं चल रहे हो? मैंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे तो किसी ने नहीं, नहीं नहीं तुम बैठो, यहां बैठो। तो उनका स्नेह मिला। 1957 में हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव और परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज प्रेम कुटीर में एक ही कमरे में रहते थे। स्वामी जी महाराज वहीं थे, प्रेमपुरी जी वहीं, उनका श्री जी सिंह शांत उस दिन भी वो वहीं थे। बड़ा स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे, स्नेह मूर्ति थे। और जैसा शास्त्रों ने कहा है, अयम आत्मा परानंदा परम प्रेमास्पदम यतः, ये आत्मा तो परमानंद है, क्यों? परम प्रेमास्पदम यतः, परम प्रेम वाली है। और स्वामी प्रेमपुरी जी ने उस नाम को केवल नाम के रूप में नहीं बल्कि सार्थक किया था, प्रेमपुरी जी थे। और उनके उत्तराधिकारी अपने परम श्रद्धेय त्यागमूर्ति जी महाराज, अभी आपने सुना कि हमारे गुरुदेव के लंगोटिया ही हर्ष, उनका भी स्नेह हमको बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि 1960 में संन्यास आश्रम कनखल में स्थापना हुई और उसके 2 साल के बाद ही साधना सदन की वहां स्थापना हुई। हमारे आश्रम और साधना सदन के बीच में कोई दीवार नहीं है, केवल जो मकान की दीवार है वही है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। और प्रायः वो छत के ऊपर आते थे, हम लोग भी छत पर बैठते थे, खड़े होते थे और आपस में बड़ी अच्छी सुंदर चर्चा भी करते थे। त्यागमूर्ति जी का जीवन मैंने जो देखा पास से, उन्होंने कितना निर्माण किया। एक बार वहां देवेश्वर घाट की स्थापना हो रही थी तो मैंने कहा कि बिरला जी को एक आशीर्वाद किसी संत ने दिया था कि जब तक तुम्हारे यहां कोई सफेद चीज का व्यापार होगा और साथ में मंदिर बनता रहेगा, मंदिर कभी बनना बंद नहीं होगा, तब तक तुम्हारे यहां कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैंने कहा मुझे लगता है कि स्वामी जी महाराज को, त्यागमूर्ति जी को भी ऐसा ही है, इनका भी कहीं ना कहीं काम चलता ही रहता है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ, तो चलते। लेकिन मैंने देखा स्वयं खड़े होकर के वो इंतजाम करते थे, लेकिन साथ ही उनका अंदर से वो जो साधना है वो भी चलती रहती थी। कभी भी साधना जो है वो उनके कार्य निर्माण में बाधक नहीं बनी, और जो निर्माण है वो कभी साधना में बाधक नहीं बना, दोनों साथ में चलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक वाक्य बहुत ही सुंदर कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो, मेरा ध्यान करो और युद्ध करो। और इसको उन्होंने सार्थक किया, हर समय अपने ध्यान में स्थित रहते हुए भी वह हमेशा कार्य भी करते थे, निर्माण भी करते, सब कुछ करते, एक एक की व्यवस्था का ध्यान रखते थे। और मुझे याद है 1970 में मैंने आचार्य करने के बाद जब प्रवचन करना शुरू किया, मैंने कहा नहीं सबसे पहले यहां आओ प्रवचन करने, तो मैंने पावलोव में प्रवचन आरंभ किया, उसके बाद यहां भी कई साल तक आते रहे। तो उनके साथ बैठ करके, कभी भी उनके साथ बैठे तो वो कभी इधर उधर की बातें नहीं करते थे, कोई ना कोई शास्त्र की चर्चा उठा करके ही चर्चा करते थे। तो शास्त्र को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, साक्षात जिया भी है। जो कुछ वो पढ़ाते थे, जो कुछ वो सुनाते थे दूसरों को, वो अपने अंदर भी देखते थे। मुझे उन्होंने एक बार कहा था कि महेश जी, वो ऐसे ही कहते महेश जी, एक बात याद रखो और वो ये कि जो कुछ पढ़ो उसको अपने अंदर जरा पहले देख लो कि हमारे अंदर भी है कि नहीं। अब ये जो मुझे कहने वाला व्यक्ति है उसका अपना जीवन कैसा रहा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी त्याग मूर्ति थे वो। जितना बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास ऐश्वर्य होता उससे कोई कम ऐश्वर्य उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो त्याग मूर्ति थे। जीवन में वस्तु का होना ना होना ये तो प्रारब्ध का खेल है। जो भी आपके पास विभूति आती है, जो भी आपके पास ऐश्वर्य आता है, वो तो प्रारब्ध से आता है, लेकिन उसका ग्रहण करना ना करना, और करना तो अनासक्त भाव से करना, ये मैंने उनमें ही देखा। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे गुरुदेव का 2002 में श्री शांत हुआ, उस समय त्यागमूर्ति जी महाराज बहुत ही दुर्बल हो गए थे, बीमार भी थे, लेकिन फिर भी जब उनके संस्कार के लिए गंगा जी तक ले जाना था, नीलधारा तक, तो वो पैदल चलने लगे। मैंने बहुत आग्रह किया कि महाराज आप तो कम से कम गाड़ी में बैठ जाइए, पीछे गाड़ी आ रही। कहा नहीं, पैदल ही चले वो, और पैदल ही चलते चलते वहां तक गए। इतनी तपस्या वो जो है करते हुए गए। ये क्या है, ये दोस्त कह देना, मित्र कह देना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे क्षणों में भी, और वो तो आते थे रोज, अपने कभी अपने आश्रम में आते थे, तो एक दिन देखा तो स्वामी ने कहा, तो कहा क्या बड़ा दुख रहा है, कहते नहीं कुछ नहीं हो रहा। तो त्यागमूर्ति ने पूछा फिर क्या है, कहते ये तो बुढ़ापे के वो है, लटके हैं ये तो बुढ़ापे के लटके होता है। तो और उनके पास भी हम जाते थे, अंतिम दिनों की बात मैं बता रहा हूं, अंतिम दिनों में भी जाते थे, कभी भी करें तो चर्चा कोई करें तो वो शास्त्र की ही चर्चा करें, दूसरी चर्चा नहीं करें। ऐसे जिन्होंने शास्त्र को जिया है, जिन्होंने शास्त्र को साक्षात अनुभव किया है, ऐसे व्यक्ति जो है मिलना बड़ा दुर्लभ है। और उनकी सेवा में जो लगा रहे, जिसने उनकी व्यक्तिगत जीवन में सेवा की है, ऐसे विश्वात्मानंद जी महाराज, उनका तो हमको अति स्नेह प्राप्त है, अति प्रेम प्राप्त है। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो वो अपना कार्यक्रम छोड़ के भी वहां आते हैं और हमको भी आना ही पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो कभी शरीर छूट जाने के बाद भी उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त नहीं होता। वो आज भी जहां जहां हम जाते हैं, जहां वो रहे हैं जाते हैं, तो वहां उनकी स्मृति आते ही ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका अस्तित्व वहां है। तो ये जो है विलक्षणता है महापुरुषों की, जिसका हमने स्वयं अनुभव किया है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में वंदन करना, ऐसे महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा की भावना को प्रकट करना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और जहां तक ग्रंथ हैं, उन्होंने कितने ग्रंथ छपवाए, कितने वो किया, वो सब जो है उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालता है। उनके जीवन पर प्रकाश डालना तो हम लोगों के लिए कहां संभव है, क्योंकि वो तो ऐसी अनंत मूर्ति थे, त्याग मूर्ति नहीं, अनंत मूर्ति थे। तो ऐसी मूर्ति के चरणों में पुनः पुनः वंदन करता हुआ और आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपने वचनों को यहीं उपसंहार करता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
अब अध्यक्ष प्रवचन के अनंतर तो और कुछ नहीं रहता सिवाय आभार विधि के। आज सायंकाल महाराज श्री जी के द्वारा संस्थापित स्वामी श्री प्रेमपुरी जी सत्संग मंडल जेबी नगर अंधेरी में भी महाराज श्री जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। आप जरूर वहां पर सब लोग पधारे। स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल के सत्संगी जनों का आप सबको आग्रह है। अब गिरीश भाई आभार विधि संपन्न करेंगे। गिरीश भाई और कुछ सूचना होगी तो वे देंगे।
हरिओम। पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए आभारनीय आशीर्वाद की ही अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि संतों से आशीर्वाद ही लिया जाए और जो श्रोतागण है वह भी यहां आशीर्वाद दे, क्योंकि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं इस कक्षा में कि कुछ हम भी सीखे, हम भी कुछ करें, हमारा भी कोई जीवन ऐसा उत्कर्ष हो। मुझे याद है कि पिताजी के पीछे हरिभा एड्रेस वाला जो मेरे पिताश्री थे उनके पीछे यहां भागवत रखी थी, तो उसके आमंत्रण देने के लिए मैं और मेरी धर्मपत्नी रमण रेती से निकले और साधना सदन हरिद्वार पहुंचे। महाराज जी बड़े अस्वस्थ थे जो हमने अभी सुन रहे थे, और उनके ऊपर जो रूम था वहां मैं और मेरी धर्मपत्नी गए तो कई दो तीन संत उनकी पूरी सेवा कर रहे थे। कुछ बड़ा वो रखा हुआ था, उसमें पानी गर्म रखा था और कुछ सेवाएं हो रही थी, और इतनी उनके चेहरे पर कुछ देख के इतनी वेदना हुई कि कैसी अवस्था में महाराज जी है। देखा गिरीश आए, महाराज जी प्रणाम करता हूं, मेरी धर्मपत्नी ने प्रणाम किया, थोड़े टाइम बैठे, ऐसी थोड़ी बातें हुई प्रेमपुरी के बारे में। तत्पश्चात उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि पिताजी के रूम में लेके जाओ इनको, अगर वो ना अच्छा लगे तो फिर गंगा तट दोनों रूम दिखा दे रहा। तो यह सालों के बाद पिताजी का रूम कौन सा होगा उनको कैसे पता चला, वो मेरे को बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ। वहां गया, बड़ा जबरदस्त कमरा था, मैंने बोला मेरे को यहां नहीं, फिर गंगा तट पे हम दोनों रहे। मगर तुरंत ही उन्होंने ये भी कहा कि एक घंटे में आप चले आएंगे, महाराज जी नीचे आएंगे। जब हम नीचे सभाखंड में पहुंचे मैं और मेरी धर्मपत्नी, तो देखा तो सभी बराबर लोग बैठे हुए थे जैसे हम लोग बैठे हैं, वहां नीचे ज्यादातर बैठे थे सब। और पूज्य महाराज जी पधारे, जो वेदना ऊपर उनको दिख रही थी वो तब दृष्टिमानी नहीं हुई, एकदम शांत और जैसे कोई वेदना नहीं, कोई बात ऐसी नहीं, बड़े स्वस्थ होकर उन्होंने कुछ 45-40 मिनट तक जो भी स्वाध्याय की प्रक्रिया थी उनकी बाकी वह की। तो यह एक संतों का किस तरह का जीवन आखिरी, यानी कि जो एक दो साल ही उसके बाद महाराज जी का शरीर रहा, तो वह अवस्था हमने देखी। महाराज जी यहां 75 साल पिताजी के हुए, तभी यह जो स्टेज की बात की, जो महाराज जी का था उसी तरह से बड़ा स्टेज सजा हुआ था, पिताश्री बनारसी साफा पहने हुए थे, गणेशान जी महाराज त्यागमूर्ति जी की अध्यक्षता थी, हम भी यहां बैठे थे। महाराज जी ने बड़े भाव से कहा कि हरिभाई आज तो तुम्हें ऑरेंज पहन ही लेने चाहिए, भगवे पहन लो हमारे वस्त्र, आज इतने सुंदर दिख रहे हैं आप। तो बड़ा प्रेम था एक दूसरे पर, और यह सब बातें हमने देखी है, सुनी है आप लोगों के साथ ही बैठकर। तो ऐसे त्यागमूर्ति जी, उनको हम वंदन करते हैं। यहां जेबी नगर से भी कई सत्संगी पधारे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जैसे वह प्रेमपुरी सत्संग मंडल है या प्रेमपुरी आश्रम है, दोनों मर एक ही प्रेमपुरी जी महाराज के आशीर्वाद है। तो आप हमारे वहां आए, हम आपके वहां आए, हम हमारे घर में ही हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे बताया गया, जो ग्रंथ पुस्तिका जो है संतों के हाथ से दी जाएगी, और उसमें बड़ी बात यह है कि महाराज जी गणेशान जी महाराजपुर के सिग्नेचर भी उसमें, हस्ताक्षर भी है। तो यह जरूर से आप प्राप्त करके, जैसे प्रेमपुरी में बड़ा शिस्त है, पहले महिलाएं माताएं सब आएंगी और बाद में पुरुष वर्ग आएंगे, बड़ी शांति से हम लोग त्यागमूर्ति जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे और संतों के आशीर्वाद लेंगे। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।